हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसकी सवाल का जवाब देते हुए श्वेता बोली, अरे मैं तो अपने एक रिलेटिव से मिलने आई थी, वो यहाँ पर ही रहते हैं ना, इसी फ्लोर पर। लेकिन तुमसे यहाँ पर मिलने की उम्मीद नहीं थी अक्षत। इतना बोलते हुए उसने फिर से उसका नाम लिया। अक्षत ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, प्लीज चुप रहो, मैंने तुमसे कहा है ना, मेरा नाम मत लो ऐसे यहाँ पब्लिक में। अक्षत के इस तरह डांटकर चुप करवाने पर श्वेता अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया और एकदम धीमी आवाज में बोली, ठीक है मैं नाम नहीं लेती तुम्हारा, लेकिन तुमने बताया नहीं क्या कर रहे हो तुम ऐसे गेटअप चेंज करके। श्वेता ने इतनी देर में दोबारा ये सवाल किया। इस पर अक्षत बहुत ही इरिटेट हो गया और उसने कहा, क्यों मैं नहीं आ सकता क्या यहाँ, और मैं भी किसी से मिलने आया था लेकिन अभी वापस जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम शोर मत करो, मैं नहीं चाहता कि मेरे फ़ैन मुझे देख लें और फिर यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाए। अक्षत उससे बात कर ही रहा था कि तभी किसी ने साइड से निकलते हुए उन दोनों को नोटिस किया और कहा, अक्षत कपूर, सीरियसली अक्षत कपूर यहाँ मेरी बिल्डिंग में। एकदम भौचक्का होकर इतना बोलते हुए वो आदमी मुंह पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाने लगा। अक्षत ने उसकी तरफ देखकर अपने सिर पर हाथ मारा और फिर श्वेता की तरफ गुस्से से घूर कर देखा, क्योंकि इन सब में फिलहाल सारी गलती उसकी ही थी। श्वेता भी ये बात समझ रही थी, इसलिए उसने एक आंख दबाकर कान पकड़ते हुए एकदम धीरे से कहा, सॉरी। उसका वो सॉरी सुनकर भी अक्षत ने कुछ नहीं कहा। उस आदमी की तरफ देखते हुए अक्षत ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं मैं अक्षत कपूर नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतना बोलते हुए उसने जल्दी से अपने सनग्लासेस लगा लिए और वहां से सीधा लिफ्ट की तरफ भागा। लेकिन उस आदमी के इस तरह चिल्लाने की वजह से वहां पर चार पांच लोग जमा हो गए थे, जिनमें से कुछ लड़कियां भी थीं जो कि अक्षत की बहुत बड़ी फैन थीं और उसका नाम सुनते ही वहां पर दौड़ती हुई आ गई थीं। वहां पर आते ही उन लड़कियों ने उस आदमी से पूछा, अक्षत कपूर तुम अक्षत कपूर क्यों चिल्ला रहे हो, सपना देख रहे हो क्या दिन में? तो उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं मैंने तो अक्षत कपूर को ही देखा, वो देखो वहां लिफ्ट में जा रहा है। इतना बोलते हुए उसने थोड़ी दूर लिफ्ट की तरफ भागते हुए एक आदमी की तरफ उंगली दिखाई, जिसका सिर्फ बैक साइड ही उन सबको नजर आ रहा था। वो श्वेता को वहां पर ही छोड़कर सीधा लिफ्ट में भागा और उसके अंदर जाते ही लिफ्ट जल्दी से बंद हो गई। जब तक बाकी सारे लोग लिफ्ट तक पहुंच पाते, लिफ्ट वहां से नीचे चली गई। उन लोगों ने काफी मायूसी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में वो अक्षत कपूर था? नहीं मुझे तो लगता है इसे कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसी जगह जहां पर हमारे छोटे से अपार्टमेंट में भला क्यों आएगा? इस पर दूसरी लड़की ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा। एक और लड़की ने थोड़ा आराम से बताया, उसका तो इतना बड़ा बंगला है, मैंने सुना है ऐसे चार अपार्टमेंट आ जाएं उसके बंगले में। इस पर उस आदमी ने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहा, हाँ हो सकता है कि वो आदमी अक्षत कपूर ना हो, वैसे भी वो वहां पर उस लड़की के साथ साइड में बात कर रहा था और अक्षत कपूर ऐसा क्यों करेगा, जरूर मैंने किसी और को देखा होगा जो उसकी तरह लगता है। उस आदमी ने इतना कहा, उसकी बातें सुनकर सभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए और उसे बुरा भला बोलते हुए वहां से थोड़ा इधर उधर जाने लगे। उन सबकी ये बातें दूर खड़ी श्वेता भी सुन रही थी। उसी के साथ भीड़ में पीछे की तरफ खड़े दो लोगों ने भी अक्षत का नाम सुना और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। जबकि अक्षत किसी तरह उन सबसे बचकर निकलता हुआ पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी कार तक पहुंचा, जहां उसका ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही खड़े उसका ही इंतजार कर रहे थे। वहां पर पहुंचते ही अक्षत लगभग भागते हुए कार तक आया और तुरंत ही अपनी कार के अंदर बैठते हुए बोला, चलो जल्दी चलो यहां से। अक्षत को इस तरह से हड़बड़ाते हुए देखकर उसके बॉडीगार्ड ने पूछा, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना, आप ठीक तो है ना? अक्षत ये उसकी बात सुनकर कहा, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, किसी ने मुझे पहचान लिया और यहां पर अगर रागिनी को इस बारे में भनक लग गई तो फिर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी चलो यहां से। अक्षत ने उसी तरह से परेशान होकर घबराते हुए ये सब कुछ कहा। उसकी बात सुनकर तुरंत ही बॉडीगार्ड भी अंदर आ गया। वो ड्राइवर के साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठा और उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। वो लोग वहां से निकल गए क्योंकि अक्षत को लग रहा था कि अभी भी वो लोग या रागिनी में से कोई उसके पीछे हो सकता है, इसलिए वो वहां से अपने बंगले नहीं गया बल्कि वो सीधा अपने पेरेंट्स के घर की तरफ ही चला गया, क्योंकि उसे लगा ऐसे में रागिनी को उस पर जो भी शक हो वो उसका शक यकीन में नहीं बदलेगा। लेकिन मन ही मन वो बस यही दुआ कर रहा था कि बस रागिनी उसके पीछे ना लगी हुई हो, और विवान से उसकी कॉल भी इन सब में डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेकिन अक्षत का ध्यान फिलहाल उस तरफ है ही नहीं कि वो कॉल पर कनेक्टेड है या नहीं, ना किसी पर बैठा हुआ बस बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था
और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आगे देखते हुए उसने थोड़ी राहत की सांस ली। दूसरी तरफ अक्षत का बंगला। विवान की अक्षत के साथ कॉल पर जो बात चल रही थी वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई। वो काफी परेशान हो गया। उसने तुरंत अजय को कॉन्फ्रेंस पर कनेक्ट किया और उससे इस बारे में पूछा, तो अजय ने कहा, डोंट वरी सर, मैं अभी भी अक्षत सर के साथ कनेक्टेड हूँ और उनकी लोकेशन भी मुझे दिखाई दे रही है। आप परेशान मत होइए, ड्राइवर और गार्ड दोनों ही उनके साथ हैं और वो कार में बिल्कुल सेफ है। अजय की बात सुनकर विवान बोला, ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। विवान अजय से बात कर ही रहा था कि तभी नैना एकदम घबराई हुई सी वहां पर आई और उसने कहा, विवान तुम कोई जरूरी काम कर रहे हो क्या? क्योंकि हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है, प्लीज क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? नैना को इस तरह घबराया हुआ देखकर विवान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाते हुए बोला, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। सही से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा सांस तो ले लो और बताओ क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? और हॉस्पिटल अब किसके लिए जाना है, तुम्हारी बहन तो घर पर आ गई थी ना? नैना थोड़ा सा शांत होने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी उसकी आवाज में टेंशन कोई भी सुन सकता था। हाँ वो घर पर आ तो गई थी लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। पता है मैंने अपनी स्वीटी को कॉल किया था क्योंकि सुनैना का फोन लग नहीं रहा था, लेकिन जब उसने कॉल किया तो वो बहुत परेशान लग रही थी और मैंने थोड़ा सा जोर देकर पूछा तो स्वीटी ने मुझे पूरी बात बता दी। विवान ने बीच में बोला, और क्या है वो पूरी बात, मुझे भी तो बताओ। नैना उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, पूरी बात यही है, स्वीटी ने बताया कि सुबह वो थोड़ी अजीब बातें कर रही थी और उसके बाद तेज आवाज में चिल्लाने की वजह से उसके सिर में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। तो अभी मैं उसे दोस्त के साथ कौन से हॉस्पिटल लेकर गई हूँ डॉक्टर के चेकअप के लिए। हाँ मुझे भी उससे मिलना है, पता नहीं क्यों मेरी सुनैना।
और ये सब बोलते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि उसे सच में अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने कभी भी उसके लिए ये सब कुछ नहीं सोचा था जो कुछ आज सुनैना को झेलना पड़ रहा है। उसकी हेल्प नहीं कर पा रही है इसलिए बस ऐसे टाइम में वो उसे देखना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। विवान भी ये बात अच्छी तरह से समझता है और साथ ही अक्षत उसे वहां पर लेकर उसके साथ नहीं जा सकता, इसलिए विवान तुरंत ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया और वो दोनों कुछ ही देर में रेडी होकर वहां से निकले। उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर के वहां पर हॉस्पिटल में ना होने की वजह से आदित्य काफी ज्यादा गुस्से में है और अनय आदित्य को समझा रहा है, पर आदित्य उसकी बात सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा और परेशानी में इधर से उधर टहल रहा है। कुछ ही मिनट के बाद डॉक्टर वहां पर आ गए। वो पूरी अपनी ड्रेस में थे और सीधे सुनैना के रूम की तरफ ही जा रहे थे, वो भी तेज कदमों से चलते हुए। डॉक्टर को वहां पर देखकर आदित्य को उन पर थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो तुरंत ही सुनैना के ट्रीटमेंट के लिए चले गए, तो आदित्य भी फिर उनके रास्ते में नहीं आया और ना ही उसने डॉक्टर को रोका, बल्कि जितनी देर डॉक्टर सुनैना के रूम के अंदर रहे उतनी देर वो बाहर खड़ा हुआ, बहुत ही घबराया हुआ और बेचैन फील कर रहा था। वो तो अच्छा है कि पूरे टाइम अनय उसके साथ था, नहीं तो आदित्य शायद पागल हो जाता या फिर गुस्से में जरूर कोई उल्टी सीधी हरकत कर देता। उन दोनों के अलावा और सिर्फ स्वीटी को इस बारे में पता है और किसी को भी उन दोनों ने इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए उन दोनों के अलावा कोई भी वहां पर नहीं है। कुछ देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकले और उन्होंने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य तुरंत ही उनके पास पहुंचा और उसने पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी सुनैना को? वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी और फिर अचानक से बोलते बोलते ही बेहोश हो गई सुबह, वो ठीक तो है ना? वो फिर से कोमा में तो नहीं जाएगी ना? उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? आदित्य जितना सुनैना के लिए परेशान था उसके लिए अपनी पूरी फिक्र दिखाते हुए उसने डॉक्टर से ये बात पूछी, तो डॉक्टर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मिस्टर सिंघानिया, आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी वाइफ ठीक है, वो बस मैंने आपसे कहा था ना कि एक हफ्ते में इनका फिर से चेकअप होना है। और तभी डॉक्टर आदित्य की बात का जवाब देते हुए बोल ही रहे थे कि एक हफ्ते में चेकअप वाली बात सुनकर आदित्य उनकी बात काटते हुए बीच में बोल पड़ा, हाँ मुझे याद थी डॉक्टर ये बात, लेकिन अभी एक हफ्ता कहाँ हुआ है, सुनैना को अभी घर गए हुए तो सिर्फ दो दिन ही हुए हैं और तभी ये सब। तो इस पर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया आप पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी वो उनकी चोट ऊपरी तौर पर ठीक हुई है, जख्म भर गए हैं, लेकिन चोट से ब्रेन के अंदरूनी हिस्सों पर क्या नुकसान हुआ है ये हमें एक हफ्ते बाद ही पता चल पाएगा। क्रमशः